हमारा रास्ता प्रेम का रास्ता, प्रेम सिवा प्रेम के छोड़कर कोई चीज, और वो भी बेलौस प्रेम। दुनियावी प्रेम में कोई ना कोई इच्छा और वासना रहती है, और जब तक वो पूरी होती रहती है तब तक वो प्रेम बना रहता, और जिस रोज वो खत्म हो गई तो वो प्रेम भी खत्म हो जाता। जो सच्चा और बेलौस प्रेम होता है वो पुश्तों दर पुश्तों चलता रहता, और वही बेलौस प्रेम आपके जीवन को और दूसरे जीवन को यहां तक कम से कम तीन पुश्तों को ताड़ देता। देखिए, इसी नगरी में संत श्रोमणी कबीरदास जी थे, उनके पास धनी धर्मदास जी आए, अधिकारी आदमी थे, उनने कहा नंगे होके आओ। उस वक्त कड़ोरों की हैसियत थी, सब कुछ दान करके थोड़ा छोड़ के चले आए। फिर आए, उन्होंने कहा नहीं, सब कुछ है लेकिन नंगे हो गया, और इस तरह तीन मरते उनको वापस कर दिया था। चौथे मरते आप सब कुछ दान करके एक टाट का बोरा लपेटे हुए मैं अपनी स्त्री के साथ और बच्चे के साथ पहुंचे। उन्होंने कहा गुरुदेव अब हम बिल्कुल नंगे होके आ गए हैं। आपने उठा कि उन्हें अपने गले से लगा लिया और ये कहा तुम मेरे हो। देखिए, ये प्रेम था, सेक्रीफाइस ये थी, तुम सब हम तो सब दान करके आ गए हैं, हमारी पत्नी का क्या होगा, उनका वो भी हमारी है, उनका हमारे बच्चों का उनका वो भी हमारे हैं। तो उन्होंने कहा धनी धर्मदास जी, ये प्रेम का सौदा है और सात पुश्तों की आपको मैंने सौदा कर लिया, और देखिए जितना काम धनी धर्मदास जी का किया कबीरदास जी का, वो सब धनी धर्मदास जी ने किया। तो बेलौस प्रेम में देना ही देना होता, लेना नहीं कुछ होता। परम पूज पाव जी महाराज जो उनसे वास्ता लोग थे उनसे क्या ले गए, दे ही गए। तो खाली सेक्रीफाइस में देना देना होता, बेलौस प्रेम हो उसके बाद किसी चीज की आवश्यकता नहीं। लेकिन उसके लिए सत्संग सतनाम और सत्संग की जरूरत है। जब तक ये बराबर नहीं मिलती रहती, कितना ही अच्छा अभ्यास हो किसी वक्त भी राह से बेराह हो सकता। अभ्यासी को सच्चे हृदय से सच्ची लगन से अपने अभ्यास को करें, सत्संग उसे बराबर मिलता रहे, गुरु के द्वारा जो नाम दिया जाता है वही सतनाम होता है। वो एक ऐसी ढाल होती है जो हर जगह गिरने से बचाती है, और सत्संग से जितने आपके हृदय पे आवरण पड़े हुए हैं जो कि प्रेम में बाधक हैं वो सब कटते चले जाते हैं। और एक दिन, क्योंकि हमारी यहाँ की तालीम सीना व सीना है, तो वही सीने मिल सकते हैं जिनके हृदय में पवित्र प्रेम होगा, दूसरे हृदय मिल ही नहीं सकते। जिनके दिल में तंगदिली, मजहब, जात पात, नफरत, वो कितने ही कुछ करें धोखा दे सकते हैं लेकिन ईश्वर तक नहीं पहुंच सकते। ये ऐसी चीजें हैं जो कि उन्हें हमेशा नीचे की तरफ लाएंगी। हमारे यहां भाव जो है दास लेके चलते हैं। दास की परिभाषा क्या है? रात दिन सेवा करे, भीख मांग के खाए। उसका अपना कुछ नहीं होता, वो खाली अपने गुरु पर डिपेंड करता है, हर चीज से उसी से भीख मांगता रहता है कि हे गुरुदेव हम पर दया कीजिए। दास से बढ़ के हम लोग सेवक पाते हैं और उसमें मनुष्य जाति एज होल की सेवा करते हैं, उसमें ये नहीं देखते कि कौन हिंदू है, कौन मुसलमान है, कौन सिख है, पूरी मानव जात की सेवा। उससे बढ़ के आगे चलते हैं, अपने गुरु की भक्ति पाते हैं कि हर वक्त हमारी गुरु की याद में रहते हैं और गुरु की भक्ति करते हैं, और जो गुरु ने बताया है उसका प्रैक्टिकल अनुभव करते हैं, तब वो ज्ञान आता है। और इसीलिए भगवान ने कहा सबसे ज्यादा प्रिय मुझे ज्ञानी है, ज्ञानी पुत्र मुझे सबसे प्रिय हैं। लेकिन उनके साथ ज्ञान का अहंकार रहता है, उनका उसके बाद भक्त हैं, उनके भी दिमाग में कभी कभी अपनी भक्ति का अहम आ जाता है, उनका उसके बाद सेवक हैं, तो सेवक के भी दिमाग में ये रहता है अगर मैं ना होता तो ये काम ही नहीं होते इनके। सेवा से दुनिया मिलती है। जिन लोगों ने सेवा की उनको ईश्वर की दया से दुनिया में बढ़ोतरी हुई, और जिसने दास भाव रखा, ये प्रेम का भाव होता है, उसे ईश्वर मिलता है। और जब उसका अनुभव कर लेता है तो वो दूसरों को भी बताता है कि इस तरह से प्रेम डेवलप करके तुम भी इस रास्ते पर चल सकते हो, और तभी वो ज्ञानी होता है। ऐसे ही ज्ञानी परम पूज्य लाला जी महाराज साहब ने, चाचा जी महाराज साहब ने अपने शिष्यों को जो बनाया, उनने उस ज्ञान का दूसरों को भी दिया। अगर मान लीजिए कोई खुद ज्ञानी हो जाए और उससे दूसरों को फायदा ना हो तो उतना बेहतर नहीं होता है बनिस्बत उसके कि उससे दूसरों का फायदा होता है। तो खाली गुरु से प्रेम कर लीजिए, प्रेम भी बेलौस कर लीजिए, जिसमें कहीं भी खूब टटोल के देखिए कि साहब आखिर हमें इनसे प्रेम क्यों है, और जब हर जगह से जवाब मिल जाए कि साहब कोई कारण नहीं है, तब ये समझिए बेलौस प्रेम है। बेलौस प्रेम कभी खत्म नहीं होता, जन्म जन्मांतर तक चलता रहता है, और उसी के साथ उसी प्रेम के आधार पर गुरु आपके पूरे वंशों को अपना लेता और पुष्ट दर पुष्ट अपनाता चला जाता है। जो प्रेम डिग गया वो प्रेम नहीं है। प्रेम के लिए सिवाय एक पवित्र हृदय को छोड़ के और कोई चीज नहीं। पवित्र हृदय जो हर चीज से साफ सुथरा हो, जिसके अंदर सब चीजों में से के पर्दे हट जाएं, सिवाय एक ईश्वर प्रेम को छोड़ के और कोई चीज ना रहे। और ऐसे ही लोग जो परम पूज्य भाव जी महाराज के संपर्क में आए, लाला जी महाराज साहब के संपर्क में आए, उनमें से उन्हीं लोगों के जीवन सफल हुए। ऐसा नहीं था उन लोग के भी साथ और लोग भी आए, लेकिन क्योंकि प्रेम में जो था कोई ना कोई इच्छाएं छिपी हुई थी, जिसकी वजह से वो वैसे नहीं बन सके। गुरु का एक ऋण होता है, हमारे यहाँ कोई दक्षिणा नहीं लेते, हमारे यहाँ कुछ नहीं लेते, एक ऋण है कि उसी के जैसे बन जाओ। और उस रोज उस गुरु की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता, जिस वक्त वो अपने आदमियों में से एक आद को भी इस युग पाता है कि मेरा जैसा बन गया। और जो भी ऋणी आदमी है, चाहे वो दुनिया का ऋण हो चाहे दीन का हो, उसकी मोक्ष नहीं हो सकती। मोक्ष उसी शख्स की होगी जो अपने गुरु का भी ऋण चुका दे। गुरु ने आपको दिया ही दिया, तो आपका भी फर्ज ये है कि उस जैसे बन के उनके ऋण चुका दिए। और उसी में लगन में जीवन को बिता दीजिए। ऐसे बुजुर्ग हैं, ईटा वाले डॉक्टर साहब थे, उनकी शक्ल भी पूर्व पर लाला जी महाराज साहब से मिलने लगी, यानी स्थूल मिलने लगा था। लोग धोखा खाते थे, बाबूजी कह रहे कि बेटे हम रात दिन धोखा करते थे तब धोखा खाते थे। पेशकार साहब थे, लाला जी महाराज साहब की तरह बिल्कुल उन्होंने अपने स्थूल तक को बना रखा था। एक बार तो आप बैठे हुए थे, डाकिया मनियडर दे गया, चतुर्भुज साय जी ने रिसीव कर लिया क्योंकि उनको जरूरत थी। दूसरे दिन डाकिया आया तो उन्होंने कहा भाई हमारा कोई मनेडर तो नहीं था, उस रोज लाला जी महाराज बैठे हुए थे, उन्होंने कल तो आपके हाथ में दे गए हैं। फिर उन्होंने कहा अच्छा वो हमारे भाई थे। फिर वो पलट के देखने आया दोनों में, तो लोगों ने अपने स्थूल तक को, यानी ये इसी 100 वर्ष की अंदर की है, अपने गुरु की तरह बना लिया। कैसे कि हर वक्त अपने गुरु के ख्याल में रहे। तो खाली प्रेम को पकड़े रहिए, बराबर सत्संग करते रहिए, जहां मिल जाए जैसे मिल जाए। और जो गुरु ने रास्ता बताया है, नाम बताया है, उसे पकड़े रहे, कभी धोखा नहीं होगा। धोखा उन्हीं लोग को होता है जिन्हें सत्संग नहीं मिलता, जो गुरु के बताए हुए नाम को नहीं पकड़ पाते और जो गुरु से मिलते जुलते। क्योंकि जब प्रेम का रास्ता है, जितना मिलेंगे उतना ही बढ़ता चला जाएगा, जितना कम मिलेंगे। इसीलिए परम पूज्य लाल जी महाराज साहब कहते थे तुम्हें क्या करना बेटे, पैसा खर्च करके आ जाते हो और समय देते हो, यही बहुत दे रहा है। तो देखिए, समय देते थे, पैसा खर्च करते थे, उनसे घनिष्ठता बढ़ती चली। और घनिष्ठता में पिछले जन्म का गुरु का कोई एहसान नहीं होता, जो हम पिछले जन्म का करके आए हैं उसी आधार पर। एक मर्त पोस्टमास्टर साहब जो थे वो गंगा जी नहाने जा रहे थे, लाला जी महाराज भी जा रहे थे, न जानते थे न जान थी न पहचान थी। आपने हमारे गुरुदेव से कहा जाओ इस शख्स को बुला लाओ। वो गए, उन्होंने कहा आपको हमारे गुरुदेव बुला रहे हैं। उन्होंने कहा हम नहीं जाते। चले गए। देखिए अगर अपना अहम होता तो फिर नहीं कहते, क्योंकि उनकी पिछले जन्म की कमाई थी, फिर भेजा जाओ घर चले जाओ और उनको बुला लाओ। फिर भी उनने मना कर दिया। ये वही पोस्ट, ये भैंसियापुर की जगह जहां पर ये बाबा जी रहते हैं वहीं सब पोस्ट मास्टर थे। एक दिन घूमते हुए आप उनके यहाँ पहुंच गए। तो देखिए गुरु चल के जाता है, किसके लिए, जिसका पिछले जन्म का साथ होता। और उसके बाद वो उनसे ऐसे चिपके के उन्हीं के बन के रहे। तो जो चीज जहां रुक जाती है उसी के बाद आपकी रीबर्थ होती है, लेकिन उसके से अपने विवेक से आगे फिर बढ़ना होता है। अगर विवेक का सही इस्तेमाल नहीं हुआ तो आगे की चढ़ाई रुक जाती है, और 5-6 जन्म में रुकने के बाद एक दिन ऐसा आता है जो पिछली कमाई थी वो नष्ट हो जाती है। देखिए एक क्लास में लड़का 1 साल फेल हो गया, स्कूल में रख लिया, दूसरी साल फेल हो गया, तीसरी साल बराबर फेल होता रहता है तो उसे स्कूल से निकाल देते और वो पढ़ाई से महरूम रह जाता है। यही हाल ये है कि जो ईश्वर ने दया करके हमें ये शरीर दिया है और ये कृपा की है कि हमें ऐसे बुजुर्गों का साथ मिला, तो हमें भी, हमारा भी ये धर्म है कि अपने विवेक को इस्तेमाल करके आगे की तरक्की करें। हर एक की अच्छाइयां बुराइयां उसके साथ जाएंगी, दूसरा उसका भोगी नहीं बनेगा। तो विवेक का सही इस्तेमाल यह है कि ईश्वर ने जब हमको इंसान बनाया है, इन एक फारसी का वर्ड है जिसका मतलब उसकी शान। मनुष्य जो है वो भी मनुष्य, मनु का जिसमें अंश होगा वही मनुष्य है, और उसने आत्मा रूप में हमारे स्थूल शरीर में रख के और खुद जो है गायब हो गए। हमारा क्या काम है, अपने को मिटा दें और उसे जाहिर करें, नहीं तो क्या होता है जब वो चीज निकल जाती है तो लोग कहते हैं शरीर मट्टी हो गया। मट्टी कहां, शरीर तो वही था, क्यों मट्टी हो गया, कि असल उसका अंश निकल गया। तो जब अंशी से आप दूर हो गए उसी रोज आप मट्टी हो गए। ये स्थूल शरीर है, चाहे किसी का हो, जिसके जैसे धर्म के हिसाब से उसी उससे किया जाता है, लेकिन किसी उसमें चले जाइए चाहे वो धर्म हो, हर एक कहेगा मट्टी हो गया सब। मट्टी को साथ नहीं भेजते, भेजते आत्मा को साथ। और इसीलिए नए कपड़ों में लपेट के भेजते हैं कि बेदाग जिससे आए, सब रो रहे हैं, दुखी हैं, ये भी कह रहे हैं मट्टी हो गया, नहीं कपड़ा नया पहना के भेजते। अगर वाकई में मट्टी हो गया फटे पुराने कपड़ों में भेज देते, लेकिन हम शरीर को विदा नहीं कर रहे हैं, शरीर किसी का विदा नहीं होगा, हम उस आत्मा को विदा कर रहे हैं जो कि परम पिता परमात्मा का अंश, उसमें और परमात्मा में खाली क्वांटिटी का फर्क है, क्वालिटी का कोई फर्क नहीं है। तो जब उसको जाहिर कर दिया तो मतलब उसका जहूर हो गया। और जितना सब खेल है उस सब खेल यहां के ऊपर का, यहां से नीचे आत्मा ही नहीं उतरी। और इसीलिए क्योंकि आत्मा की धार उतरी है, साइंस के स्टूडेंट इससे बेहतर समझ पाएंगे, ये सब प्लेसेस हैं, एक इधर से नस जाती है एक इधर से जाती है, दोनों बीच में जाके यूनाइट हो जाते हैं। यही इंद्रधनुष था जिसको भगवान रामचंद्र जी ने तोड़ा था। लक्ष्मण जी भी ने कहा कि न जाने हम कितने तोड़ चुके हैं, इसका मतलब ये था कि उन्हें भी इसका ज्ञान था। उनका कोई रघुवंशी बैठा होता है तो उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं करते जो आपने की, ये अनुचित है। लेकिन किसकी आज्ञा से तोड़ा? गुरु की आज्ञा से तोड़ा। दोनों पीछे मुसलमानों में इसी को ईद का चांद कहते हैं। दोनों नर्व जहां मिलती हैं वहां पे यूनाइट होके पीछे एक इंच पीछे वो आपके त्रिकुटी का मुकाम। उन्हें शिवजी ने तीसरी आंख खोली, सब ज्ञान हो गया। वो सेंटर है जहां के सिवा ज्ञान को छोड़ के और कोई चीज नहीं है। तो ये जितनी चीज है ये टोटल साइंस है। नीचे के हिस्सों के लिए इसीलिए आपने देखा होगा कि हिंदुओं में जब भी डेड बॉडी ले जाते हैं, चाहे कितने ही पतले दुबले शरीर की हो चाहे कितने मोटे की, सात ही डंडे रखते हैं कि छह स्थूल के चक्र जो थे वो खत्म हो गए और स्थूल खत्म हो गया। दो साइड के डंडे होते हैं। इन लोगों में भी इसी तरह का जनाजा बनाते हैं, सिखों में भी इसी तरह का वो बनाते हैं। पट्टी भी दिए थे, एक जगह हम गए थे तो बड़े गौर से देखा कि इतनी पट्टी बंधी हुई। हमने उनसे पूछा कि भैया इसका कोई आपका वो है? बोले नहीं साहब, नीचे वो दो लगा देंगे और सात डंडे लगाएंगे, नहीं तो सब पतले दुबले आदमी में कम लगाते और उसमें ज्यादा लगाते। हम लोग राम नाम सत्य कहते चले जाते हैं, वायुमंडल में आत्मा जो देखे वो यही सुने कि राम ही नाम सत्य और कोई चीज सब चीज वो है, क्योंकि मुर्दा नहीं सुन रहा है। लेकिन वायुमंडल जो है ऐसा वातावरण क्रिएट कर देते हैं कि आत्मा भटके नहीं। हम लोग अभ्यास में क्या करते हैं, थोड़ी देर रामायण या कोई चीज पढ़ के ऐसा वातावरण करते हैं कि लोगों के विचार रुक जाए। तो दूसरे जिस वक्त भी, जब तक आपका शरीर ठीक है स्वस्थ है तब तक हमेशा बड़े अदब का ख्याल करना चाहिए। अदब का मतलब यह है कि एक ही चीज ईश्वर पर दो चीज की कमी है, उनका हमें सब कुछ है, हमारे पास दीनता नहीं है और हम पे अदब नहीं है, हमें बेअदब आदमी पसंद नहीं है और दूसरे दीनता नहीं। हम लोग प्रार्थना पढ़ते हैं ना, जो दीन हो चरणों पड़े हे नाथ वे तारे तड़े, तेरा भिखारी तुझ बिना प्रभु आसरा किसका करे। तो खाली प्रभु को एक दीन का पसंद है कि किस तरह से आप दीन बनके उसके चरणों में चले जाइए, और जब उसके चरणों में पहुंच गए उसके दरवाजे पर पहुंच गए, तब फिर अंदर दाखिल न हो पाए तो सिवा बदकिस्मती के और कोई कुछ। सब काम करिए, इन बुजुर्गों ने सब काम किए। लाला जी महाराज साहब की बड़ी फैमिली थी, चाचा जी महाराज साहब के कम थे लेकिन तब भी उस युग में भी 4 बच्चे थे, जिसमें से 3 सर्वाइवल के बाद। बाबूजी महाराज के कुल 7 बच्चे थे, 7 लड़के थे, 2 लड़कियां भी थी, लेकिन हर चीज को उसी के हिसाब से करते हुए। और एक दिन जिसको उनने फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद किसी से पलट के नहीं पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, कैसे काम करते हो, कोई मतलब नहीं था। हम में से किसी ने बता दिया और उसी रोज उन्होंने कहा बेटे बस अब हमें इन सब चीजों से कोई मतलब नहीं। तो दुनिया का फुल स्टॉप आपको लगाना पड़ेगा। किसके उससे आशीर्वाद से? गुरु के आशीर्वाद से। उसे पकड़े रहिए, नाम को रटते रहिए, सत्संग करते रहिए। कोई वजह नहीं कि बीड़ा पार ना हो। लगन सच्ची हो, मेहनत सच्ची हो। जिस तरह जिन विद्यार्थियों की पढ़ाई ऐसी होती है सिलेक्टिव, उन्हें इम्तिहान के दिन में ज्यादा पढ़ना पड़ता है, बैकलॉग पूरा करना पड़ता है। इसीलिए ऐसे भाई जिन्होंने देर से शुरू की है, वो मेहनत करके उस बैकलॉग को पूरा करें। और जिस तरह से कंबाइंड स्टडीज में फायदा होता है, इसी तरह ये भी है, एक के विचार दूसरे से पूछने से बहुत से रहस्य ऐसे खुल जाते हैं जो कि रूटीन उसमें नहीं होते। इसलिए 3 चीज, सत्संग का मतलब ही है। परम पूज्य लाला जी महाराज साहब ने उसको और फॉर्म में लिखा है कि गैर जिंस की सोहबत से परहेज रखे। गैर जिंस का मतलब ये है जिसके सत्संग के विचार ना, जिसके जैसे विचार होंगे, चोर के पास जाओगे 10 दिन चोरी की बात बताएगा तुम्हें। गुरु के पास नंगी किताब होगी। परम पूज्य चाचा जी महाराज साहब के एक शिष्य थे जो शराब पिया करते थे, तो उन्होंने कहा 3 महीने बाद अचानक आना बंद कर दिया। उन्होंने कहा भैया हमसे क्या गलती हो गई, वो सबसे हंसी मजाक करते थे। तो उन्होंने कहा चाचा ऐसा है, हम शराब पीते हैं और 3 महीने हो गए छूट नहीं पाई, पूजा वूजा सब बेकारी है। तुमने कहा भैया हमने तो नहीं कहा तुम छोड़ो, तुम अपनी कोशिश करते रहे। तुमने कहा अच्छा बताइए क्या करें। तुमने कहा ऐसा करो कि जिस वक्त तुम शराब पी के सत्संग में आओ तो हमारे कान में कह के वापस चले जाओ। तो लोग अक्सर देखते थे वो आए, उन्होंने कुछ कहा और चले गए। और आखिर में 7-6 महीने बाद हताश हो गए, वो सब सत्संग माना बंद कर दिया। 6 महीने बाद एक दिन चाचा जी महाराज साहब शाम को टहलते हुए उनके घर पहुंचे और फिर वही रिपीट किया। तो बोले चाचा हमारे बस की नहीं है और नहीं छोड़ पाएंगे अब हम सत्संग। तो उन्होंने कहा भैया ठीक है, अब तुमने हार मान ली तो हमें भी कोशिश कर लेने दो। 5-6 दिन बाद हो गए, उन्होंने बिल्कुल शराब नहीं पी, शराब का ख्याल तक हट गया। एक दिन आए डॉट लड़ते हुए कि चचा ये सब क्या किया। उन्होंने भैया हमने तुमसे नहीं कहा, तुम्ही ने कहा हम छोड़ देंगे, तुम कोशिश करते रहे, नहीं छूटी तो भाई हमसे ही कह देते, हमने कोशिश की, ईश्वर ने सुन लिया। तो जब तक गुरु को ये नहीं मालूम होगा कि आपकी कठिनाई क्या है, आप किस उलझन में हैं, तब तक वो कैसे दूर करेगा। बहुत से लोग कहते हैं उन्हें सब ज्ञान, अरे जब वो एक एक आदमी की अगर यही बात करता रहा तो दिन भर इसी उलझन में फंसा रहेगा। तो वो तो आप पार हो ना पर ना हो वो जरूर डूब जाएगा। समझे, रोज एक इस पे। तो जो भी अभ्यास में दिक्कत हो, जो भी दीन दुनिया की, बता देना आपका काम है, बात बाकी उसका। लेकिन अगर ये आप सोचें कि वो हर एक के बारे में सोचता रहेगा तो वो शायद ईश्वर के बारे में न सोच पाए, इसी सब चीज़ों के बारे में सोच। हमेशा प्रार्थना करते रहिए बगैर इस प्रार्थना के कि हे प्रभु हमसे जाने अनजाने में जो आज गलती हो गई है उनको क्षमा कर दें और हमें हिम्मत दें, हमें शक्ति दें कि हम उनको दोहराएं नहीं। खुद आप देखेंगे कि एक महीने डेढ़ महीने में आपके अंतःकरण में चेंज आएगा, और जब तक अंतःकरण साफ नहीं होगा, जिसे इंटरनल प्यूरिफिकेशन कहते हैं, आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, तो इसमें कुछ नहीं सिवा आपको अपने विचार साफ करने हैं। जो गंदगी और गंदे विचार भर रहे हैं उनको हटाना है। हृदय खुली किताब होती है, सामने आते ही बिल्कुल सब चीज़ें सामने आ जाती हैं। इन्हीं विचारों को हटाते चले जाइए तो वो एक दिन आएगा कि आपका भी हृदय ऐसा शुद्ध होगा जैसा गुरु का हृदय है, फिर दोनों के मिलने में कोई वो नहीं है। ये सत्संग में भी जो इस तरह के विचार आते हैं उन्हीं के लिए ये भजन किए जाते हैं, प्रार्थनाएं की जाती हैं, ताकि थोड़ी देर के लिए वो विचार, अगर बराबर वो विचार आते रहे तो सत्संग का वातावरण दूषित हो जाता है। और इसीलिए बहुत से लोग यानी अलग कंसंट्रेशन ही नहीं कराते हैं, इंडिविजुअल को खाली इसमें, और अगर गुरु मेहरबान नहीं है और गुरु की दया नहीं है तो वो खुद भी जाएगा। इसीलिए हर तरह प्रार्थना करते रहते हैं कि हे प्रभु हम पर दया कीजिए, और हर वक्त ख्याल रखते हैं कि हमारे साथ हमारा गुरु है। एक मर्त है लाला जी महाराज साहब जो थे, उनसे शाहजी नाम के फकीर थे, बड़े नाराज थे। नाराज इसलिए थे, नाराजगी मौलवी साहब से थी कि उनने एक हिंदू को वारिस क्यों बना दिया। लेकिन आप हर वक्त उनके ख्याल में रहते थे, अदब था, तो पहले उनने चमत्कार दिखाए। उन्हें फतेहगढ़ रेलवे स्टेशन पर जब लाला जी महाराज साहब मौलवी साहब और चाचा जी महाराज साहब के साथ जा रहे थे तो वो घूमते रहे, गाड़ी चल दी, और उसके बाद जब अगले स्टेशन पर पहुंचे तो फिर वहां घूमते हुए मिले। तो खाली वो इन लोगों को ये दिखाना चाह रहे थे कि हम में ज्यादा शक्ति है और हमारी वो, ये दोनों जने मौलवी साहब के ख्याल में थे, किसी ने इसकी वो चिंता ही नहीं किए कि ये कहाँ दिखाई पड़े। मौलवी साहब मुस्कराए, दो स्टेशन पर ऐसे ही रहा, तीसरे स्टेशन पर आपने मौलवी साहब साहब से फरमाया कि साहब साहब फकीरों को ये हरकत शोभा नहीं देती, जानवरों में चिड़िया बड़ा छोटा जानवर है, वो एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पहुंच जाता है, अब कोशिश करिए अगले स्टेशन पर मिले। अगले स्टेशन पर साहब, क्योंकि उनकी शक्ति थी वो खत्म, इसलिए वो नाराज रहे। उनमें एक सिद्धि ये थी, जिससे गले मिलते थे उसकी परमार्थिक विद्या खींच लेते थे, मौके की तलाश में थे। एक दिन वो परम पूज्य लाला जी महाराज साहब से गले बड़े तपाक से मिले, और इसी इंटेंशन से मिले। वो अपने गुरुदेव के ख्याल में थे, वापस आ गए, और कानपुर में वो बीमार थे मौलवी साहब, वहां पहुंच गए। और इधर शाह साहब के बड़ा दर्द हुआ और इतना बेचैन हो गए कि सब डॉक्टर्स जितने फरुखाबाद के थे सबका ट्रीटमेंट किया, सिविल सर्जन उस वक्त सबसे बड़े होते थे, कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी मन में कपट था, ये किसी से नहीं बचाए। बाद में उन्होंने कहा कि ऐसा करो, यहां फायदा नहीं होगा, कानपुर लेते चलो। लिहाजा फतेहगढ़ का इलाके से कानपुर राधे वो था, वहां पहुंचे। उनके मुरीदों ने पूछा किसको दिखाएं, क्योंकि मन में कपट था, तब भी नहीं कहा। तो जो विचारों की जैसी थी उन्हें दिखाया। आखिर में उन्होंने कहा और कहीं फायदा नहीं होगा, मेरी जान निकल जाएगी, मुझे मौलवी साहब के पास दे दे। तब ये लोग, कपटी आदमी आसानी से कपट नहीं छोड़ते। ये वो है जो फकीर थे। जब वहां पहुंचे तो अपने शिष्यों को बाहर बैठा ला और शिकायत की कि आपके बेटे पुत्तूलाल ने हमारी सब विद्या खींच ली। तब भी वो मुस्कुराए। तो उन्होंने कहा पुत्तूलाल ऐसी बदतमीजी कर नहीं सकते, बाजार गए हुए हैं, आ जाए तो मैं पूछ लेता हूं। जब लाला जी महाराज साहब तशरीफ लाए तो मौलवी साहब ने पूछा, तो उन्होंने कहा कि साहब हम तो ये विद्या भी नहीं जानते हैं, और न ये ख्याल था कि आपने हमें क्यों गले लगाया, हम तो आपके ख्याल। तब उन्होंने कहा कि देखो भाई शाह साहब, आपकी विद्या कमाई मैंने खींची है, आप इनसे और ये मेरे ख्याल में थे। तो जब भी आप गुरु के ख्याल में रहेंगे कोई धोखा ही नहीं, और जहां अपने में आ गए उसी वक्त तालीम देने का तरीका ही ये होता है कि अपने को अपने गुरु में पूर्ण फनाइयत कर देते। तब उन्होंने कहा कि इनको तवज्जो दो और इनकी विद्या वापस की। तो क्या है, हृदय की सफाई होनी चाहिए, अपनापन नहीं होना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए, और गुरु से बिल्कुल नंगे हो के बात के साहब हम में ये बुराई है, हम में ये कमी है, अब ये आप की जिम्मेदारी है। तो धीरे धीरे सब छूटती चली जाती है। कोई दुनिया में ऐसा शख्स नहीं है जिसमें कमियां ना हो, किसी में कुछ होती हैं, किसी में कुछ होती है, किसी में कम होती हैं। अगर कमी न होती तो हम ही ना ईश्वर हो गए होते हैं, तो हमें पूजा पाठ की काहे। उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए और उसकी जगह ईश्वर प्रेम को भरने के लिए ही हम लोग ये सत्संग करते हैं। और इसी तरक्की का भी यही है कि जितनी आपका प्रेम बढ़ता जाएगा उतनी आपको तरक्की होती चली जाएगी। जितना खाली वो है, बची हुई चीज जो है फिजिकल एक्सरसाइज ज्यादा है, नियम ज्यादा है, बंधन ज्यादा है, प्रेम की चाल बिल्कुल हवा की चाल होती है और उसमें किसी का वो होती है। प्रेम जिससे होता है, परम पूज्य बाबू जी महाराज समझ बताते थे कि जो दाल जिज्जी बनाती थी वो दाल तुम्हारी मां बेटे नहीं कभी बना, जबकि हमारी तीनों माँ बड़ी अच्छी खाना बनाती। तो एक दिन हमने जिज्जी से पूछा कि साहब आप कौन सा दाल बनाती थी, तो हंसने लगी, कह रहे कौन कह रहा था, श्यामलाल कह रहे थे। तो बोले बेटे एक तंगी का वक्त था, लाला जी महाराज ने कहा श्यामलाल आ गए तो एक कटोरी पानी पड़ गया, उनका श्री कृष्ण आ गए दूसरी पड़ गया, तो दाल कभी नहीं बनती, पानी बनता रहा, लेकिन उसके पीछे वो प्रेम था जो इन्हें खींचे हुए था, जो प्रेम था जिससे, क्योंकि उनकी दाल की प्रशंसा गुरुदेव से, बाबूजी से, हरेक से सुनी, तो ये हुआ कि शायद भाई कोई स्पेशल बना दी। तो तो खाली प्रेम ही एक बाइंडिंग फैक्टर है, वही इंसान को इंसान से मानता है और इंसान को ईश्वर से मानता है। और जब तक इस प्रेम को नहीं बढ़ाएंगे, और वो भी जब तक बेलौस नहीं प्रेम होगा, तो ना आपस के हृदय मिलेंगे ना ईश्वर से हृदय मिलेंगे। उसके जोड़ने के लिए प्रेम को बढ़ाते चले जाइए और चीजें अपने आप घटती चली जाएंगी। जब ईश्वर से प्रेम बढ़ता चला जाएगा, बुराइयां खत्म होती चली जाएंगी। एहतियात जीवन भर रखते हैं, उस एहतियात के लिए हमेशा बुजुर्गों ने कहा है, हर एक ने परम पूज्य बाबू जी महाराज साहब को आपने देखा होगा, कभी हमेशा ये कहते थे कि बेटे हम तो कुछ नहीं, पता नहीं लाला जी महाराज साहब की हम पर दया क्यों हो गई। ये वो लोग थे जो सिलेक्टेड लोग थे। ताऊ जी महाराज कहते थे कि बेटे पता नहीं, हम तो हर तरह से उनसे झगड़ा भी किए, वो भी किए, लेकिन वो हम पे इतने क्यों हमसे प्रेम करते थे हमारे समय, क्योंकि ये भी उनसे सब लोग बेलौस प्रेम करते थे। तो प्रेम ही एक जुड़वा सकता है और प्रेम ही आपको एक अलहदा करा सकता है। इस प्रेम को बढ़ाते चले जाएं, एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि उस मालिक की दया होके उससे भी जुड़ जाएंगे। अच्छा सब चले।